एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अपनी जीवन की यात्रा को देखते हुए चलते चलते जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं कि माइंड क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी फिर मुझे क्यों नहीं सफलता मिली। दूसरों तो इतना किया भी नहीं था, मेहनत मैंने की, क्रेडिट किसी और ने लिया, मेहनत की, सब कुछ ठीक चल रहा था, चलते चलते फिर कुछ हो चुका, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ ऐसे रिश्ते जिन पर बहुत विश्वास किया लेकिन रिटर्न में कुछ और मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। चलते चलते आसपास भी देखें और अपने जीवन को भी देखें तो अचानक बातें हो रही है आजकल, लगता है ऐसा? यस, सडनली कोई लॉ चेंज हो जाएगा, सडनली गवर्नमेंट में कुछ चेंज हो जाएगा, सडनली हेल्थ के साथ कुछ हो जाएगा, कोई रिश्ते में कुछ हो जाएगा, अचानक अचानक बातें आती हैं। We are living in a time of uncertainty. Certainty नहीं है जो पहले हुआ करती थी। Even कई बार तो ये भी नहीं पता कि morning में job है तो evening में है या नहीं है। कुछ साल पहले तक होता था एक job मिली तो retire होने तक safety है, security है। आज सुबह की रात को security नहीं है। तो when we are going through this period, जहां चारों तरफ uncertainty है, अचानक unpredictable है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बाहर जो चीजें हैं वो uncertain है। अब इस समय पर जब बाहर uncertainty है, अगर हमारा respond करने का तरीका भी uncertain होगा कि बात आएगी और हमें अपनी उतनी गारंटी नहीं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? बाहर भी अनसर्टेनिटी, अंदर के रिस्पॉन्स की भी अनसर्टेनिटी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पहले का जो समय था बाहर सर्टेनिटी थी, नौकरी मिली रहेगी, शादी हुई एंड तक इकट्ठे ही रहेंगे, बेटा है हमेशा साथ ही रहेगा, ये सर्टेनिटी थी, ये सर्टेनिटी थी। तो जब बाहर में सर्टेनिटी थी, अगर हमारे अपने इमोशंस पे अनसर्टेनिटी भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन जब बाहर अनसर्टेनिटी और रिस्पॉन्ड करने के तरीके में भी अगर अनसर्टेनिटी हो गई तो रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा रिजल्ट? अब बाहर पहले सर्टेनिटी थी, अब बाहर सर्टेनिटी नहीं है। अब समय की पुकार क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? दो ही ऑप्शन है, या तो बाहर सर्टेनिटी ले आए या फिर ये गारंटी कर ले कि बाहर से कुछ भी हो जाए मेरा रिस्पॉन्स उसकी मुझे गारंटी है। दोनों में से एक चीज की गारंटी चाहिए, या तो परिस्थितियों की गारंटी या फिर अपने रिस्पॉन्स की गारंटी। अब के समय में परिस्थिति की गारंटी नहीं ले सकते, सामने वाले व्यक्ति की भी गारंटी नहीं ले सकते। कोई जो आपके साथ 20 साल से बिजनेस कर रहा हो अचानक आज मन बदल जाएगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। और वो कोई स्ट्रेंजर भी नहीं, कई बार अपना ही भाई होगा, हो सकता है? दिस इज अनसर्टेनिटी। अब हमें गारंटी किस चीज की लेनी है, किस चीज की गारंटी लेनी होगी कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए मुझे अपने एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन उसकी गारंटी है। कर सकते? वेरी ट्रू, देयर इज नो अदर ऑप्शन ओनली। क्योंकि जब दोनों चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो केओस हो जाएगा। अगर दोनों में से एक कंट्रोल में नहीं लेकिन एक कंट्रोल में तो संभल जाएगा। किसी ने मुझे धोखा दिया वो मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी गारंटी है कि मैं उस परिस्थिति को आराम से क्रॉस कर लूंगा तो भी बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है कि बाहर की सिचुएशंस को हम ना चेंज कर सकते ना कंट्रोल कर सकते। हम सिर्फ एक ही चीज की गारंटी ले सकते हैं, हम उसको कैसे फेस करेंगे। राइट? कर सकते? तूफान आएगा मालूम नहीं, भूकंप आ सकता है मालूम नहीं। हम सिर्फ क्या गारंटी ले सकते? बिल्डिंग स्ट्रांग फाउंडेशन पे बना सकते हैं। राइट? अगर बिल्डिंग स्ट्रांग फाउंडेशन पे बनाई तो निश्चिंत रहेंगे उसके अंदर कि भूकंप आए या तूफान आए, मुझे ये पता है कि ये बिल्डिंग हिलने वाली नहीं। तो अब कौन सी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी? अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग। फिर जीवन में भूकंप आए या तूफान आए, एक गारंटी तो पक्की कि हम उस बात को फेस स्टेबिलिटी से कर पाएंगे। उसके लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। जीवन में जब ऐसी छोटी बड़ी बातें आ जाती हैं तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और जब कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसका ब्लेम हम किसी पर नहीं डाल सकते तो उस टाइम हम ब्लेम किस पर डाल देते हैं? किस पर ब्लेम डालते हैं? कहते हैं ना, क्योंकि हर एक ने हमेशा हमें यही कहा कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, खुदा की मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। राइट? राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। जैसे हम कभी किसी को कहते हैं ना कि चलो आप माउंट आबू चलो, कॉन्फ्रेंस है, कहेंगे परमात्मा की मर्जी होगी तो जरूर पहुंच जाएंगे। आप सब किसकी मर्जी से पहुंचे यहां? किसकी मर्जी से पहुंचे? और फिर टिकट बुक कर ली, सब कुछ हो गया, एक दिन पहले कुछ इम्पोर्टेंट डील आ गई, कुछ इम्पोर्टेंट बात आ गई तो प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। मैं प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया भाई साहब, परमात्मा का बुलावा नहीं आया था अभी, जब वो बुलाएगा तब जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ और ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट लग गई इस टाइम तो मैं उसके लिए कैंसिल कर रहा हूं। तो किस पर ब्लेम डाल दिया हर बार? एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, परमात्मा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हम किसी के घर गए जिनके 24 साल के बेटे ने शरीर छोड़ा, 3 days later उसकी एंगेजमेंट थी, शादी पे गए, वापिस आ रहा था, खाली सड़क थी, कुछ नहीं, अभी तक नहीं मालूम क्या हुआ, बस गाड़ी मिली, सर पे थोड़ी सी चोट, उधर ही उसी क्षण शरीर छोड़ा। उनसे जब हम मिले तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कहा, भगवान ने हमें कौन सी बात की सजा दी? बोला किसने कहा भगवान ने सजा दी? नहीं, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया ना ये हमारे साथ होना था, और जब भगवान ने इतनी ऐसी चीज हमारे साथ की है तो जरूर हमें कोई ना कोई बात की सजा दी। जब हम ऐसा सोचेंगे कि भगवान ने हमें किस बात की सजा दी तो ऐसा भगवान कैसा लगेगा, ऐसा भगवान कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उससे तो हमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगी ऑफ कोर्स। एंड उनका, उनकी ही फैमिली में एक मेंबर, हमने उसको हमारे साथ गाड़ी में आया, हमने कहा आओ सेंटर पर अंदर, कहते नहीं मुझे नहीं आना। बोला क्यों? कहा वो लोग इतना करते थे भगवान का, वो इतना करते थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे भगवान के घर मुझे नहीं जाना। तो किससे नाराजगी हो गई? ये बहुत सटल है। जब हमें ये लगता है ये भगवान की मर्जी से हुआ तो वो भगवान हमें अच्छा लगता नहीं, और जब वो भगवान हमें अच्छा लगता नहीं तो ऐसे टाइम पे हम उससे अपना कनेक्शन क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कई लोग अपने घर में जो मूर्ति है, मंदिर है, उठाकर सारा फेंक देते, नहीं चाहिए ऐसा भगवान, क्योंकि भगवान की मर्जी से ये सब हुआ। इज इट ट्रू कि उनके बेटे के शरीर छोड़ा भगवान की मर्जी से? इज इट ट्रू? ऐसे समय पर आप देखो जो लोग भी आते हैं ना मिलने के लिए, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं ना, भगवान की मर्जी थी। कहते हैं कि नहीं कहते? भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है, ऐसे ही अफसोस करने जाते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? क्या इसमें भगवान की मर्जी थी जो उनके घर में हुआ? यस, इट वॉज फेट, यस इट वॉज फेट, डिसाइडेड बाय। पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है, यही सुना पड़ा ना। कभी सोचना चाहिए कि पत्ता पत्ता अगर परमात्मा की मर्जी से हिलता हो और ये दुनिया भी परमात्मा की मर्जी से चले और हम सबका भविष्य भी परमात्मा की मर्जी से लिखा जाए तो दुनिया कैसी होगी? हाँ, स्वर्ग जैसी, क्या स्वर्ग ही होगी फिर? इट मीन्स हर चीज कैसे होगी फिर? परफेक्ट होगी। आज परफेक्ट नहीं है। एक और बिलीफ सिस्टम हमने बचपन से सुना, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। इज इट ट्रू? दोनों में से विच इज ट्रू, कि जो हमारे साथ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, या जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब है? विच इज ट्रू? सेकेंड वन साउंड्स मोर फेयर, यस। तो फिर अगली बार जब भी मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहां रखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर रखते हैं तो ब्लेम भी उस पर ही डालते हैं, चेंज करने के लिए भी उसे ही कहते हैं और नाराज भी उसके साथ ही हो जाते हैं। परमात्मा को पहचानने के साथ साथ परमात्मा के रोल को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है। आज सुबह हमने देखा परमात्मा हमें क्या देते हैं, ज्ञान, प्यार और शक्ति। आप अपने बच्चे को क्या देते हैं? ज्ञान, प्यार और शक्ति। लेकिन फाइनली बच्चा कर्म क्या करता है वो किसकी चॉइस होती है? क्या पेरेंट कभी भी बच्चे के कर्म को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। सिर्फ क्या दे सकता है? एडवाइस दे सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है। उसके बाद उस बच्चे का कर्म उसका अपना। अब उस बच्चे के कर्म का जब रिजल्ट उस बच्चे के सामने आएगा, क्या पेरेंट उस रिजल्ट को रोक सकता है? क्या पेरेंट उस रिजल्ट को रोक सकता है? तो पेरेंट क्या कर सकता है उस टाइम? सपोज बच्चे से कुछ हुआ, उसका रिजल्ट सामने आया, पेरेंट क्या कर सकते हैं उस टाइम? अगेन यू कैन गिव ज्ञान, प्यार एंड शक्ति, कि ये आई हुई बात को कैसे फेस करना है, वो एडवाइस, प्यार, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। ना पेरेंट बच्चे का कर्म कर सकता है, ना पेरेंट बच्चे के कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चेंज कर सकता है, ना परमात्मा हमारा कर्म करता है, ना परमात्मा हमारे कर्म के कॉन्सिक्वेंस के बीच में इंटरफेयर कर सकता है। तो फिर कितना अटेंशन रखना पड़ेगा, कितना अटेंशन रखना पड़ेगा अपने कर्मों पर? यस, कितना अटेंशन रखना पड़ेगा? हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। सारा दिन में एक चीज है जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं एंड वो है थिंकिंग, सोचना। फर्स्ट थिंग वी क्रिएट है हमारी थॉट। जैसी हमारी थॉट होगी, सेकेंड चीज हम फील करेंगे। अगर हमने अच्छी थॉट क्रिएट की, ऑटोमेटिकली फीलिंग भी कैसी हो जाएगी? हम अच्छा फील करेंगे। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी किसी के प्रति, वो बन जाएगा हमारा एटीट्यूड। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, वैसा हम एक्शन में आएंगे। कोई भी एक्शन हम बार बार रिपीट करेंगे, वो बन जाएगी हमारी हैबिट। जैसी हमारी सारी हैबिट्स होंगी, वो बन जाएगी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व। और जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, वो ही वैसा हम कर्म करेंगे, वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे और वो ही एनर्जी हमारे पास वापस आएगी। मतलब वैसा हमारा भविष्य डेस्टिनी होगी। स्टार्ट कहां से हुआ? ये प्रोसेस प्लांट है, ये हमारी फैक्ट्री का प्रोसेस प्लांट है। थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी। तो व्हाट क्रिएट्स माय डेस्टिनी? माय थॉट्स। वन रॉन्ग थॉट कैन चेंज माय डेस्टिनी। अब हम औरों के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। आप जाते हैं कभी? जाते हैं भविष्य जानने के लिए? एक है अपना भविष्य जानने के लिए जाना एंड दूसरा है अपने चॉइस का भविष्य बनाना। कौन सा बेटर ऑप्शन है? हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो वो बताएंगे प्रिडिक्शन एक्यूरेट, आपके साथ ये होगा, 2 साल में ये होगा, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो सारे वो प्रिडिक्शन बताएंगे। वो प्रिडिक्शन वो बताएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। वो तो होने ही वाला है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है हमारे साथ क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्या है? जो होने वाला है वो तो होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जब वो होगा हम उसको कैसे फेस करेंगे, वो कौन बता सकता है? उसकी प्रिडिक्शन हमें खुद करनी है। द सिंपलेस्ट वे इज टू नॉट टू गो एंड फाइंड आउट, क्योंकि एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम अपने अंदर भरते हैं, इंफॉर्मेशन, थॉट्स से डेस्टिनी, थॉट्स का बेसिस क्या है? इंफॉर्मेशन। एक एक बात जो हम किसी से सुनते हैं, और आजकल तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक के पास नहीं जाते हैं, एक से पूछते हैं, फिर जन्म पत्री लेते दूसरे के पास जाते हैं, फिर शहर में कोई और आया उसके पास भी चले जाते हैं, एक एक से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो बात सुनी वो यहां अंदर चली जाएगी। किसी ने कहा आपके अगले 2 साल भारी है, चली गई बात अंदर। अब थॉट कैसी क्रिएट शुरू होगी? अब थॉट शुरू कैसी होगी? अगले 2 साल भारी है। किसी ने कहा आपका कोई बहुत क्लोज वाला आपको धोखा देने वाला है, अब थॉट कैसी चलेगी हर एक के प्रति? कौन सा वाला है? वो बिजनेस पार्टनर है या बेटा है या वाइफ है? क्योंकि पंडित जी ने तो सिर्फ बोला कोई एक जो आपके बहुत नजदीक है, उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि काम पे या घर पे, तो हम शक किस पर करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद आपको कोई धोखा देने वाला है। 6 महीने कैसे बीतेंगे, 6 महीने कैसे बीतेंगे, स्ट्रेस में भी बीतेंगे और डाउट, यस, शक, धोखा एक ने देना है, हम शक कितनों पर करना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली ये सब करने के बाद 6 महीने में आत्मा की बैटरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और जब वो बात आएगी तो उसको फेस करने की पावर पहले से कम हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है जानना कि क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट है कुछ भी हो जाए हम उसको फेस करने के लिए, ठीक से रिस्पॉन्ड करने के लिए हम इक्विप्ड हैं या नहीं है। सारा दिन में एनर्जी का इक्वेशन हमें बहुत क्लियर रखना है। जैसा हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो एनर्जी है जो हम क्रिएट करेंगे, हमसे बाहर निकलेगी, जाएगी, और वही एनर्जी वापस आएगी। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो वाइब्रेशंस, एनर्जी एरोज हम क्रिएट करेंगे, बाहर भेज देंगे। वो है हमारा कर्म। जो थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस हम क्रिएट करेंगे, वो है एनर्जी जो हमारे से निकलेगी, बाहर जाएगी, वो है हमारा कर्म। जो बातें हमारे साथ होंगी, कोई सिचुएशन, कोई लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आएगी, वो है हमारा, जो एनर्जी हमारे से बाहर जाएगी वो है हमारा कर्म, जो एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आएगी वो है हमारा। जो एनर्जी, ये सारा दिन पकड़ना है इसको, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, वो तो बचपन से सुना था लेकिन सारा दिन में यूज नहीं किया उस बात को। अब अटेंशन, जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो एनर्जी हमसे निकलेगी, बाहर जाएगी, कर्म। जो परिस्थिति हमारे सामने आएगी, लोग हमारे साथ जो व्यवहार करेंगे, वो है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आएगी, वो है हमारा, वो है हमारी डेस्टिनी। और अब ये जो वापस आ रहा है वो हमने ही कभी ना कभी भेजा था। अब हमारा फोकस किस एनर्जी पर होना चाहिए, जो हमारे से बाहर जा रही है या जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है। यहां से बॉल लिया, सामने वाली दीवार पे मारा, अब क्लियर है कि ये बॉल हमने मारा, एक बॉल हमने मारा है, एक बॉल सामने से वापस आ रहा है। हमारे कंट्रोल में क्या है, जब हम यहां से मार रहे हैं वो बॉल सामने हिट करेगा और वापस तो आएगा ही आएगा। जब वो बॉल वापस आ रहा है, क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं? जब वो बॉल सामने से वापस आ रहा है क्या हम कुछ कर सकते हैं? दोबारा, ये जो बॉल वापस आ रहा है सामने से, ये है किसी का हमारे से व्यवहार, ये है बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव, ये है अचानक किसी का मेरे जीवन में आना और कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना और चले जाना, ये है बॉल जो सामने से आ रहा है। क्या हम इस बॉल को कुछ कर सकते हैं? हम सारा दिन कंट्रोल किसको करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो सामने से आ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब हमें क्लैरिटी हो गई, ये बॉल मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में कब तक था? तो जब वो बॉल सामने से आ रहा है तब हमारे कंट्रोल में क्या? जैसे ही कोई बात आती है जीवन में, इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड बात कोई बड़ी नहीं, जैसे ही हमें कोई कुछ कह भी दे हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब वहां से बॉल आई तो इमीडिएटली यहां से क्या गया उसी टाइम? इमीडिएटली उसी टाइम यहां से क्या गया? एक नई बॉल गई ना।
हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो नई बॉल हम उस टाइम भेज रहे हैं। हमारा फोकस आजकल किस पर होता है ज्यादातर? जो बॉल सामने से आ रही है, और उस बॉल पर फोकस करते करते उस टाइम नई वाली बॉल भी कैसी चली जाती है? नई वाली बॉल भी कैसे चली जाती है? सपोज आज किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, किसी ने हमारी इंसल्ट की, किसी ने कुछ बुरा कहा, वो बॉल सामने से आ रही है। और अगर उस टाइम हम हर्ट हो गए, हमने भी उल्टा कुछ जवाब दे दिया, हमने भी जोर से कुछ कह दिया, तो नई वाली बॉल भी कैसी भेजती? तो नेगेटिव आई थी, फिर नेगेटिव भेजती, अब क्योंकि फिर नेगेटिव भेजी है तो फिर आएगी, और जब आएगी फिर हम उसी पर फोकस करेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे? हम फिर भेज देंगे, पिंग पोंग, सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी जाती जाएगी। अब हमें क्या करना है? तोड़ना है, स्टॉप नहीं कर सकते, चेंज करेंगे। जब बॉल सामने से आएगी तो यहां से बॉल तो जानी ही है। अगर हमारे साथ कोई बात होगी तो सोच तो चलनी ही है, मतलब नई बॉल तो जानी ही है। आप बॉल फेंके नहीं, ये हो नहीं सकता, लेकिन चॉइस ये है कि किस क्वालिटी की फेंकनी है। क्या ये हो सकता है कि सामने से कोई नेगेटिव बॉल फेंक रहा हो और हम एक अलग क्वालिटी की बॉल फेंक दें इस पर? सपोज नेगेटिव बॉल को हम कहें कि ब्लैक कलर है। अब कोई हमारे पर ब्लैक बॉल्स, ब्लैक एनर्जी फेंक रहे हैं, हमेशा बुरा बोलते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं करते, हमें आके क्रिटिसाइज कर देते हैं, हमें धोखा देते हैं, कुछ भी। अब मतलब वहां से कौन से रंग की बॉल आ रही है? सब काली काली काली। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बुरा भी सोच रहे हैं, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? डिफिकल्ट, फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट ही होगा। कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, सपोज हमने किसी के साथ बिजनेस किया, किसी ने हमारे को धोखा दिया उसमें, ठीक है, या किसी से हमारी पेमेंट ड्यू थी, उसने पेमेंट देने से ही मना कर दिया, हम लगे हुए उसके पीछे, पेमेंट लेनी है, वो फोन भी नहीं उठा रहा, वो गलत व्यवहार भी कर रहा है, तो वहां से कौन सी वाली बॉल्स आ रही है? सारी ब्लैक वाली आ रही है। अब हमने क्या करना है? सोचना है। सोचना है मतलब सोच तो क्रिएट होगी ही, सोच तो क्रिएट होगी ही, लेकिन किस क्वालिटी की सोच क्रिएट होगी चॉइस है। किसी ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ गलत किया, हमारे बहुत सारे पैसे उनकी वजह से अटक गए या फिनिश हो गए, शायद हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे, हम उनके लिए क्या सोच सकते हैं? नॉर्मल हम उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे हम उनके लिए? बोले नहीं, स्पेसिफाई करो, हम उनके लिए क्या सोचेंगे? थॉट क्लियर थे, क्या सोचेंगे? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, क्या सोचेंगे उनके लिए? हाँ, क्या हो जाए? वो धोखेबाज है, हाँ, उनसे बच के रहना है। अच्छा, और इसका बुरा हो, ओके, और हाँ जी, अवॉइड बिजनेस विद देम, और भगवान उसका भला करे। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ थॉट परमात्मा उसका भला करे? You know something? There is no such thing as difficult. Why? अभी सिर्फ देखो, सोचना तो है ही, थॉट क्रिएट तो करनी ही है, चॉइस ये है कितनी गंदी। अभी आपने उतनी गंदी वाली बोली भी नहीं जितनी अंदर चलेंगे। अभी यहां थोड़ी बोलेंगे ऐसे वो सारी बातें, उसमें भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का सोचेंगे, yes? है ना, कोई थोड़ा गंदा सोचेगा, कोई थोड़ा ज्यादा गंदा सोचेगा, कोई तो सोचेगा ये इसका पूरा परिवार है सर खत्म। हाँ हाँ, सोचते हैं लोग, कोई तो कर भी देते हैं, सोचना तो कितना इजी है, सोचने पे थोड़ी कोई वो लग रहा है, कुछ भी सोच सकते हैं हम किसी के लिए, ये भी एक क्वालिटी ऑफ थॉट है। बैठे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। अब जो जो हम सोच रहे हैं वो बॉल जा रही है, एंड जो जा रही है, जो जा रही है वो सबसे पहले किसको मिल रही है? मुझे मिल रही है। जब हम बैठ के दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, उसके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या 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 उसके साथ गलत हो जाए वो सोच रहे हैं, तो पहले किसका मन अशांत हो रहा है? बाद में बॉल वापस आएगी, वो तो सेकेंडरी। अभी सोचते हुए पहले किसका मन अशांत हो रहा है? अब ये बात हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं, कई बार 5 दिन, कई बार 5 महीने, कई बार 5 साल हमने वो नफरत पकड़ के रखी, तो 5 साल किसका मन अफेक्ट हुआ? हमारा। अगर 5 साल हमने किसी के लिए नफरत पकड़ के रखी तो किसके शरीर पर असर होगा? हमारे शरीर पर असर होगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा, और बाद में जो वहां जाएगी बॉल वो वापस तो आएगी ही। तो अगर हम उनके लिए अच्छा सोचें, तो एक्चुअली हम किसके लिए अच्छा सोच रहे हैं? हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे नफरत करने से वो बीमार हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन उनसे नफरत करने से मैं बीमार हो जाऊं तो हाउ राइट इज दैट? यस, तो माई थॉट क्रिएट्स माई डेस्टिनी, माई थॉट डज नॉट क्रिएट देयर डेस्टिनी। हम बैठकर कितना भी बोले उसका सब खराब हो जाए, वो जो शुरू करे उसमें वो फेल हो जाए। हो सकता है वो जो शुरू करे वो दिन ब दिन, फिर जितनी उसकी सफलता को देखेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे। हम नेगेटिव सोचते जाएंगे वो सफल होता जाएगा, क्यों? हिज थॉट्स विल क्रिएट हिज डेस्टिनी एंड माई थॉट विल क्रिएट माई डेस्टिनी। हम सोच किसी और के बारे में रहे हैं, लेकिन हमारी सोच उसका भाग्य नहीं, हमारी सोच हमारा भाग्य बनाती है। तो उसके बारे में भी सोचना है तो कैसा सोचना चाहिए? हमारी सोच उसके भाग्य का रिमोट कंट्रोल नहीं है। हम सोचते भी वैसा है, फिर 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो बोलते भी वैसा है। भाग्य किसका अफेक्ट हो रहा है? जब हमें क्लियर हो जाता है, और सारा दिन हम इसको पकड़ते हैं, मेरी सोच मेरा भाग्य बना रही है, अब मुझे उनके बारे में सोचना है, लेकिन उनके बारे में सोचते हुए भाग्य मेरा लिखा जा रहा है, तो कैसा सोचेंगे उनके लिए? अब अगर हम एक थॉट क्रिएट करें, जो उन्होंने किया होगा मेरा उनके साथ पहले का कोई हिसाब किताब पूरा हुआ, जो लेन देन होना था वो पूरा हुआ, मैं अपनी मेहनत करूं सफल हो, परमात्मा उसको शक्ति दे। कर सकते हैं? अब ये करते ही पहले लाइट कौन हो जाएगा? हमारा थॉट हमारा भाग्य क्रिएट करते हैं। इजी? अभी तक मुश्किल इसलिए था कि जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उसके लिए अच्छा क्यों सोचूं? मैं अच्छा उसके लिए नहीं सोच रहा, मैं अच्छा किसके लिए सोच रहा हूं? मैं अच्छा अपने लिए सोच रहा हूं। अब पहली बात तो उसने गलत मेरे साथ किया ही क्यों? उसने गलत मेरे साथ किया क्यों? आंसर, उसने मेरे पास ब्लैक बॉल फेंका क्यों? उसने मेरे पास ब्लैक बॉल फेंका क्यों? क्योंकि पहले हम कभी कैच खेलते खेलते मैं फेंक के आया था उसके पास। सिंपल, ऐसे तो वो फेंक ही नहीं सकता, तो क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? आपने सुबह के सेशन में मुझे एक ब्लैक बॉल फेंकी, मैंने पकड़ी, उस टाइम सेशन पूरा हो गया तो टाइम नहीं मिला आपको वापस देने के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है 4 बजे फिर मिलेंगे, और 4 बजे आके मैंने आपको वो वापस दे दी, और जैसे ही मैंने आपको वो वापस दी आपने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये भूल गए कि कि वो जो अभी आपको 4 बजे भेजी 11 बजे ही आपने दी थी, क्योंकि 11 और 4 के बीच मेमोरी क्लीन हो जाती है। इतना ही होता है सिर्फ कि जो जो एनर्जी हम औरों को देते हैं, हमारा हिसाब किताब एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। एनर्जी एक्सचेंज चलते चलते टाइम आ जाता है दोनों में से किसी का कॉस्ट्यूम चेंज करने का, मतलब सेशन ओवर, घंटी बज गई, सेशन ओवर, कॉस्ट्यूम चेंज। जैसे ही कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, दोनों मिले फिर से, दोनों ने वहीं पे स्टार्ट किया जहां पिछली बार स्टॉप किया था। सिर्फ हुआ क्या कि हमें याद नहीं रहा कि हमने वहां स्टॉप किया था, तो अब जिसने हमें ब्लैक फेंका तो हमने कहा ये गलत, ये बुरे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब सबसे पहली क्लैरिटी, वो जो हमें भेज रहे हैं वो हमने ही उनके साथ वो हिसाब किताब शुरू किया था। अब हमारी चॉइस है कि उसी क्वालिटी का हिसाब किताब कंटिन्यू रखना है, विच मीन्स आपने मुझे 11 बजे ब्लैक बॉल भेजी थी, सेशन पूरा हुआ, मैं 4 बजे आई, आप भूल गए क्या आपने 11 बजे वो भेजी थी। मैं भी भूल गई लेकिन मेरे हाथ में है वो, तो जैसे ही आप सामने आएंगे वो अपने आप मेरे हाथ से आपकी तरफ जाएगी। लेकिन अब बार जब ये ब्लैक वाली जाएगी तो आपके पास चॉइस है कि आप फिर से ब्लैक भेजते या इस बार व्हाइट वाली भेजते, क्योंकि जो भी भेजेंगे वो ही वापस आने वाली है। तो कौन सी भेजना चाहते हैं? इनफैक्ट सामने वाला जितना ब्लैक भेजे हमें उससे कई गुना ज्यादा उसको व्हाइट भेजना है, कई गुना ज्यादा व्हाइट भेजना है। आजकल महाभारत देख रहे हैं आप टीवी पर, देख रहे हैं? एक शस्त्र यहां से आता है तो सामने वाला क्या करता है, वहां से देखता है पहले कि इसमें कौन सा शस्त्र फेंकता है, फिर सामने वाले ने क्या करना है, उससे पावरफुल शस्त्र फेंकना है और फिर बीच में जाके वो ठक। हम अगर सामने से देख रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है और हम उसको हराना चाहते हैं तो हमें कौन सी एनर्जी भेजनी पड़ेगी? वो हमें नेगेटिव भेज रहे हैं, अगर हमने भी नेगेटिव क्रिएट की तो उनका नेगेटिव हमारे ऊपर इफेक्ट कर गया, वो जीत गए। लेकिन उन्होंने हमें नेगेटिव भेजा और हम स्टेबल रहे और हमने कहा आई फॉरगिव, मतलब हमारी स्थिति कैसी रही? स्टेबल रही। वो हार गए, हम जीत गए। दूसरे के लिए गलत सोचने से सामने वाले की जीत नहीं, हमारी हार होती है। तो कोई हमारे साथ जितना बुरा करे, अगर उसको हराना है और खुद जीतना है और खुद उस परिस्थिति से ऊपर उठ के अपने भाग्य को बदलना है, प्रेडिक्शन ये होगी कि अगले 6 महीने में कोई आपको धोखा देने वाला है, फाइन, आने दो उसको, आने दो। वो धोखा ही दे सकता है सिर्फ, वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि इस बार मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। वो मेरे साथ कुछ गलत ही कर सकता है, वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं इस बार कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। तो भेजे व्हाइट बॉल। आपके पास कोई है जो आपको ब्लैक भेज रहा है आजकल? अच्छा, किस किस के पास है? हाथ उठाओ, यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग मोर अबाउट देम। कि कौन आपके पास कोई है? घर में भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी एट वर्क। किसी के साथ रिलेशनशिप में अननेसेसरी स्ट्रेन, अननेसेसरी बार बार गलत एनर्जी, किस किस के पास है जिसको ब्लैक बॉल्स आ रही है? उठाओ। हाँ जी, सबके पास कैसे? नहीं, भाई साहब कहते सबके पास आ रही है। नो, नॉट नेसेसरी। अपना डिसाइड करो किस किस के पास आ रही है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स आएगी, ऐसे थोड़ी अब भी व्हाइट भेजो और अब भी व्हाइट आ जाएगी वापस। क्यों वो ब्लैक आ रही है? सपोज आपने मॉर्निंग में मुझे 100 ब्लैक बॉल्स भेजी, फिर इवनिंग तक आपको ज्ञान मिल गया। हाँ, तो इवनिंग में लेकिन मेरे पास तो 100 इकट्ठी हो गई ना, तो मैंने तो धीरे धीरे अपनी 100 क्या करनी है, एक एक करके फेंकनी है। अब आप सडनली इनलाइटेंड होकर आ गए तो आपने 4 o'clock क्या भेजना शुरू किया, व्हाइट भेजनी शुरू की। आपने सोचा आप अभी एक व्हाइट भेजेंगे आपके पास अभी एक व्हाइट वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तो आपके पास कौन सी वापस आनी है पहले? हाउ लॉन्ग? इवन इफ यस वी आर ह्यूमंस एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ चॉइस। इवन अगर कोई जीवन भर हमें ब्लैक एनर्जी भेज रहा है, जैसे ही हम उसके लिए गलत सोचना शुरू करेंगे हमारा भाग्य, द मिनट वी स्टार्ट क्रिएटिंग हेट्रिड, द मिनट वी ट्राई टू पुल हिम डाउन, द मिनट हम उसके साथ कुछ गलत करना शुरू कर देंगे हमारा भाग्य क्या होने लग जाएगा। अगर वो भेज भी रहे हैं एंड हम स्टेबल हैं तो उनके भेजने का हमारे ऊपर क्या असर होगा? वो हमें क्या कर सकते हैं? वो हमें धन का नुकसान कर सकते हैं, कोई हमारा धन का नुकसान कर सकता है, कोई हमारे शरीर का नुकसान कर सकता है, लेकिन हमारे मन को कोई टच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। मन किसके पास है? सिर्फ यहां, उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। अगर मेरा मन स्ट्रांग है मैं अपने शरीर को भी ठीक कर लूंगा, धन भी कमा लूंगा वापस। लेकिन अगर मैंने सामने वाले को वो पावर दे दी कि उसने मेरे मन पर प्रभाव डाल दिया, उसके बाद तो धन भी गया, धन तो पहले ही गया, तन भी अफेक्ट हो गया था, लेकिन मन गया अगर, तो फिर तो हम पूरी तरह से उसके हो गए। उसके बाद हमारे पास पावर कोई रही नहीं। मन ठीक, बाकी सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं मन जीते जग जीत। तो एक ही के ऊपर ध्यान रखना है और उसके ऊपर किसी और का इफेक्ट नहीं होता है। लोग हमें बाहर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मन को एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता है। मन को एक्सप्लॉइट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ हम। किसी ने हमारे साथ गलत किया, उसको दुआ दो, उसके लिए गुड विशेस और ब्लेसिंग्स दो, तो लाइट कौन हो जाएगा? अब अगर हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, हमने उनको क्षमा किया, उनके कर्म का फल तो फिर भी उनके सामने आएगा। लेकिन जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं मैंने उनको क्षमा किया, मतलब मैंने उनके बारे में गंदा सोचना बंद कर दिया, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? रहम किस पर किया? उन पर। So we are not doing a favor to anybody else. We are not doing it to anybody else. We are only doing it to ourselves. करे अपने ऊपर रहम, करे अपने ऊपर रहम। पिछली बार जब हम दो मिले थे, हमने कोई ऐसा हिसाब किताब किया जो आज सामने आया है। आज हमारे पास चॉइस है कि वो ही कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट, नहीं तो हम फिर मिलेंगे एंड फिर वो कंटिन्यूड चलेगा एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन। अपना भाग्य बदलना हमारी चॉइस है। रेडी टू फॉरगिव? रेडी टू फॉरगिव? हाँ, कुछ करना है नहीं ना उसमें। अपनी खुशी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपनी सेहत के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपनी सोच को चेंज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उसने मेरे साथ गलत किया लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरा हिसाब किताब था एंड इट्स फाइन, ओवर, फिनिश्ड, डिलीट पास्ट, आई फॉरगिव। क्या टाइम लगेगा? ये लगता मुश्किल है, करने में बहुत इजी है। इट्स नॉट इजी। ओ यस, अगर आप ऑफकोर्स कोर्ट में जाइए, आपका कोई लीगल केस चल रहा है, इट डजेंट मीन आप छोड़ देंगे अपनी चीज को। लेकिन कोर्ट में जाकर भी अंदर नफरत कितनी क्रिएट करनी है वो हमारी चॉइस है। आपका किसी के साथ प्रॉपर्टी पे कुछ चल रहा है, बिजनेस पे कुछ चल रहा है, आप लीगल जाइए, कोर्ट में जाइए, अपना हक लीजिए, लेकिन नफरत करना, उसके प्रति गलत फैलाना, और उसको नीचे गिराने के लिए कोई कोई और तरीके यूज करना, वो हमारा प्रेजेंट कर्मा, वो हमारा कर्म, हमारा फल, हमारा भाग्य बनेगा. राइट, क्लीनिंग हियर. इट डजंट मीन वी लेट गो ऑफ एवरीथिंग कि आ जाओ मेरा सब कुछ लेकर चले जाओ. नो, इट जस्ट मीन्स वी विल डू एवरीथिंग, लेकिन हमारी सोच कैसे चलेगी. ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलती है. कोई किसी को नीचे गिराने के लिए कुछ फैला रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वो आत्मा अंदर से क्या है. जो हमारे लिए गलत बोलते हैं वो खुद अंदर से क्या है, कितने इनसिक्योर है, कितने दर्द में है, कितने डर में है. उन्हें अच्छा फील होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे के बारे में बुरा बोलना पड़ता है. ऐसे आत्मा के प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करने, ऐसे आत्मा के प्रति क्या थॉट्स क्रिएट करनी, रहम करना उनके ऊपर, रहम करना, प्यार की वाइब्रेशन देना, पावर और ब्लेसिंग की वाइब्रेशन देना. ये वाइब्रेशन देते ही पहले कौन बच गया, पहले हम बच गए, पहले हम बच गए, हमारे से वो गया. वो अंदर अंदर जल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी उनको कुछ मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा उन पर असर होगा या नहीं होगा. जैसे आपने कहा ना, सामने से नेगेटिव आता ही जा रहा है. लेट्स से सामने से इस लेवल पर नेगेटिव आ रहा है, अब आप पॉजिटिव भेज रहे हैं, अगर उनका नेगेटिव घटता नहीं तो उनका नेगेटिव बढ़ता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, उतने पे ही रहेगा. लेकिन अगर उनका नेगेटिव इस लेवल पे है और हमने भी नेगेटिव भेजना शुरू कर दिया, फिर वहां से आने वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा. तो ये अपनी प्रोटेक्शन है. अगर हमारे लिए कोई बुरा बोल रहा है, हम चुप रहे और हम कहें इट्स ओके, कोई बात होगी उनको रीजन. लेकिन अगर हम भी उनके लिए बुरा बोलने लगे, फिर वो हमारे बारे में चार गुना और बुरा बोलेंगे. एंड इट विल बिकम अ विशेष साइकिल. ना ऑल दैट दिस रिक्वायर्स अपने ऊपर संयम. एंड हमेशा याद, मेरा कर्म मेरा भाग्य है, मेरी एनर्जी मेरी डेस्टिनी, मेरी थॉट्स मेरा भविष्य लिखती है. तो मेरी हर सोच कैसी होनी चाहिए. आजकल बिजनेस में कंपटीशन है बहुत ज्यादा. कौन कौन फील करता है कि बिजनेस में, ऑफिस में कंपटीशन है. कंपटीशन मींस क्या, कंपटीशन मींस क्या, यू हैव टू परफॉर्म बेटर, बेटर देन अदर. ओके, तो अब आपका कंपटीशन है एक के साथ, यू हैव टू परफॉर्म बेटर देन देम. जब आप उनसे बेटर परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, हा? उसके बाद नया कॉम्पिटिटर खड़ा होगा. वेरी गुड. फिर आप उसके आगे जाएंगे, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर आप एक और खड़ा होगा. मतलब जीवन के लास्ट मोमेंट तक हम किस चीज में चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन, रेस. रेस में जीवन कैसी होती है, रेस में जीवन कैसी होती है, रेस में हमारी पूरी जीवन की क्वालिटी आज सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम की वजह से चेंज हुई है. एक बैंक में प्रोग्राम करवाया, उनसे पूछा ऐसे आपके टारगेट्स क्या है, ये है, कहते बहुत स्ट्रेस है. बोला क्यों स्ट्रेस है, हम नंबर वन है कंट्री में. ऐसे तो भी स्ट्रेस है, हम नंबर वन है. बोला तो क्या स्ट्रेस है अभी, फिर हमें नंबर वन रहना है. अच्छा, वो भी स्ट्रेस है. तो उनसे एक सिंपल चीज पूछा, आपके नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है. तो उन्होंने एक्स अमाउंट जो भी उनका था वो बताया, ये एक्स अमाउंट है. मैं बोला विजुअलाइज, आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं इस साल में कि आपने सोचा था एक्स होना चाहिए, आप 2x अचीव करते हैं, डबल ऑफ व्हाट यू वांट. ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी. आई सेड लेकिन Somebody else has achieved more than 2x. They were not sure whether they should be happy or not happy. And they started looking like this. I said, क्या हुआ? अभी उनको पक्का नहीं मालूम था कि इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्स टारगेट था, 2x अचीव हो गया, लेकिन फर्स्ट नहीं है अब कंट्री में, तो खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन टारगेट एक्चुअली क्या है जीवन में? एंड ये ही अगर एक्स टारगेट था लेकिन एक्स से 20% कम अचीव किया लेकिन फर्स्ट है, कौन सा बेटर ऑप्शन है? स्कूल से जब बच्चा आता है ना घर, आप बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम कैसा हुआ? कहता है अच्छा हुआ। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी सबका कैसा हुआ? इट्स द मोस्ट इररेलेवेंट क्वेश्चन एक्चुअली, इट्स द मोस्ट इररेलेवेंट क्वेश्चन। एंड अनफॉर्चुनेटली तभी उसी एज से ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं, मेरी परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इन रेफरेंस टू किसी और की परफॉर्मेंस। अगर वो बच्चे ने कल बहुत मेहनत की थी और उसने अपनी मेहनत से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसने कहा औरों का तो और भी अच्छा हुआ, तो हमने कहा देन यू आर नॉट गुड। लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत की थी और उसने कम परफॉर्म किया लेकिन औरों से बेटर परफॉर्म किया, तो देन यू आर वेरी गुड। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि आप दूसरों से आगे रहना। नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस बिलीफ सिस्टम। हमारी कैपेसिटी, हमारे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स और हमारी यात्रा जीवन की, इस पर हमें चलना है और अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आगे अचीव करना है। ये थॉट बीच में कहां से आ गई कि दूसरों से ज्यादा अचीव करना है? यहां से चलते हैं आबू रोड, अपनी अपनी गाड़ी, खुश, गाना गाते हुए, खाते पीते, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जर्नी। गाड़ी को भी किसकी स्पीड पे चलाते हुए? जो अपने को कंफर्टेबल लगे, इंजॉय द ड्राइव। अब गाड़ी चलाते चलाते दूसरी गाड़ी को देखा और एक इशारा किया, चल रेस करते। रेस थी नहीं, वो अपनी जर्नी पे थे, अपनी गाड़ी में थे, हम अपनी जर्नी में अपनी फैमिली के साथ थे। एक थॉट क्रिएट की, चलो रेस करते हैं, उसके बाद की बाकी की ड्राइव कैसी होगी? अभी तक की ड्राइव कैसी थी? इंजॉय, हंसो, खेलो, बातें करो, गाने भी सुनो। एक थॉट सिर्फ, रेस करते हैं, उसके बाद की ड्राइव कैसी होगी? अब ना परिवार की तरफ देखेंगे, ना खाएंगे, ना गाने सुनेंगे, अब सारा ध्यान सिर्फ किसकी तरफ होगा? यही हुआ जीवन में, ना परिवार की तरफ ध्यान, ना अपनी सेहत की तरफ ध्यान, ना लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि सारा ध्यान किस तरफ है? उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। वो गाड़ी अगर मर्सिडीज है और हमारी मारुति है, कैपेसिटी तो हर एक की अलग अलग ही होगी। अब कितना भी ट्राई करें, थोड़ा सा उनसे आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बीच में नीचे पहुंचे तो एक रेड सिग्नल आया, वो रुक गए, यही मौका था, क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं है उनसे आगे जाने का। तो हमने अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे क्या करना शुरू कर दिया? हम कभी ना करते हैं, कोई भी कभी ना करता अगर सिर्फ उसकी जर्नी ऐसे होती है। लेकिन क्यों कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया? उससे आगे कैसे जाऊं, जल्दी कैसे कमाऊं, और ज्यादा आगे कैसे बढ़ूं, हमने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन रेड सिग्नल तोड़ेंगे तो फाइन तो हो गए। सपोज आगे गए, उनका टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, वो खड़े हुए दिखाई दिया आपको सड़क पे, अटक गए, कुछ नहीं कर सकते, और आप पीछे से आ रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सो स्वीट भाई साहब कहते, दिस इज वेयर हम अपने ओरिजिनल संस्कार से क्या हो गए। अगर हमारी उनके साथ रेस ना होती तो हम क्या करते? तो हम रुकते, सहयोग देते, उनका ध्यान रखते, सिर्फ अगर हमारा ये बिलीफ सिस्टम ना होता कि हम रेस में हैं। और जब हम उसको सहयोग देते, उसको हेल्प करते, तो हम क्या कमाते? हम बहुत सारी दुआएं कमाते। अब एक थॉट सिर्फ कि ये रेस है, सी हाउ थॉट क्रिएट्स डेस्टिनी, एक थॉट सिर्फ कि ये रेस है, हम ऐसे ऐसे करके चले गए, जो दर्द में था हमने उसको हेल्प नहीं किया, तो वो हमें दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी देगा, देगा या नहीं देगा? दर्द में है सहयोग दो, दुआएं मिलेंगी। प्रॉब्लम में है, सहयोग दे सकते थे, नहीं दिया, तो भी तो वो हमारे को कोई तो बॉल फेंकेगा, फेंकेगा नहीं, सोच तो चलेगी। आप किसी की गाड़ी को क्रॉस करते हुए ऐसे जा रहे हैं बिना हेल्प किए, तो वो भेजेगा कुछ या नहीं भेजेगा? तो हमने क्या कमा लिया, सिर्फ एक थॉट के लिए। लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अ जर्नी, यात्रा हमारी अपनी, कैपेसिटी हमारी अपनी, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हमारे अपने। अगर मैं किसी से रेस में हो गई और वो सामने वाला अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उससे आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमारे सामने आएगा। हम उनके आगे तो चले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से गए तो वो भी फल आएगा या नहीं आएगा? बहुत अटेंशन। किसी भी चीज से जीवन में नहीं डरना है, सिर्फ एक ही चीज से डरना है, अपने गलत कर्म से डरना पड़ेगा। क्योंकि जब वो कर्म सामने आता है तो पता नहीं चलता है कि ये कौन से कर्म का फल आया है, लेकिन माइंड स्वरूप कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों, और तब हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत तो किया ही नहीं। सारा दिन में या तो हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, औरों को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड जितना हम ये करेंगे हम क्या कमाएंगे, हम दुआएं कमाएंगे। या तो हम दूसरों को रेस में जा सकते हैं, उनके आगे जा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम में अटका हुआ छोड़कर जा सकते हैं, यहां तक कि हम उनको पीछे करने के भी तरीके अपना सकते हैं, अपनाते हैं ना, किसी के बारे में जाके कुछ एक लाइन बोल दी, किसी का कुछ कर दिया, अपने आप उनकी गाड़ी पीछे हो जाएगी, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सबको सुख देना है, सबसे दुआएं कमानी है। खुशी चाहिए ना घर में, धन चाहिए सिर्फ घर में, तो धन कमाना है कैसे भी कमा लो, लेकिन अगर खुशी चाहिए घर में, सेहत चाहिए घर में, प्यार चाहिए रिश्तों में, तो वो धन से नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी कमाने से। आज हम काम करते करते कई बार दुआओं का ऑपोजिट कमा लेते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए किसी को डांट दिया, जोर से किसी पर चिल्ला दिया, किसी ने कोई गलती की उस पर शोर मचा दिया, तो अब वो बैठ के हमारे बारे में कैसा सोचेगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? ये है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। अब वो हमें कुछ नहीं बोल सकता, वो घर जाएगा अपनी वाइफ को डांट देगा, वो रोएगी, तो वो भी किसके कार्मिक अकाउंट में गया, वो भी हमारे में गया। वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं बोल सकती, बच्चे को दो थप्पड़ लगाएगी, उसके बाद वो रोएगा। ये कर्मों का हिसाब किताब है। आप कभी भी शाम को चेक करना, शाम को पता चलता है आज हमने क्या कमाया सारा दिन। अगर शाम को सर भारी लगता है, थका थका हुआ सब फील होता है, दिन में बहुत बार चाय पीने की जरूरत पड़ती है, विच मीन्स वी आर अर्निंग कुछ भारी एनर्जी। और अगर हम सबके साथ प्यार से रहते हैं, किसी से कोई गलती होती है उसको प्यार से समझाकर उठाते हैं, ये नहीं कि उसको, तो वो हमें क्या देगा? सोचो, किसी से कोई गलती हो जाए और वो सोचे कि उसको पता है ये अभी हमें डांटेंगे, लेकिन डांट के बजाय हमने क्या कर दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, होता है, हमसे भी हुआ था शुरू शुरू में, इट्स ओके, उठाया, अब वो हमें क्या देगा? अगर हम ये कमाएंगे ना दिन में, तो आप देखो शाम को आप कहेंगे पता नहीं आज क्यों इतना अच्छा अच्छा फील हो रहा है, कुछ हुआ तो है नहीं, फिर भी ऐसे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई बैठकर हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी इतना भारी भारी क्यों फील हो रहा है, इतना लो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि कोई बैठकर हमारे लिए लो सोच रहा है। जो लोग हमारे लिए सोचेंगे वो हमारे तक पहुंचेगा, मैसेज है वो। जैसे आज SMS है, WhatsApp है, आप जो टाइप करेंगे वो दूसरे तक पहुंचेगा ना, ऐसे ही जो हमारे लिए जो सोचेगा वो हमारे तक पहुंचेगा। जब हमें आत्मा का पाठ समझ में आ जाता है, हर आत्मा पास्ट के कर्म करके आई है, अब तो कंपटीशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कई बार हम देखते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतना रिजल्ट नहीं मिलता, राइट? एंड कोई आपको दिखेगा उसने मेहनत नहीं की फिर भी उसको बहुत सफलता मिल रही है, हम कहते हैं लकी, ये बहुत लकी ये अनलकी। इसका क्या मीनिंग, ये बहुत लकी ये अनलकी, इसका क्या मीनिंग, क्या मीनिंग ये लकी ये अनलकी, इसका क्या मीनिंग? किसने डिसाइड किया कौन लकी कौन अनलकी? विच मीन्स जिसको हम लकी कहते हैं, जिसको सफलता बहुत मिल रही है, वो अभी उतनी मेहनत नहीं की है, लेकिन उसको सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि वो मेहनत करके आया है। किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है और कोई भी ऐसे ही वंचित नहीं रह रहा है। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूटली फेयर। अगर आज मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, अगले कॉस्ट्यूम में मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता मेरे पास इजीली नहीं आएगी, क्योंकि मैंने किसी और की सफलता में विघ्न डाला था, तो सफलता का आने के लिए मेरे पास थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। बट इट्स ओके, इट डजंट मैटर, आई अंडरस्टैंड कि मेरा पास्ट कर्म थोड़ा भारी है। वो कहते हैं ना ग्रह भारी है, तो ग्रह भारी नहीं, मेरा पास्ट कर्म कुछ भारी है, एंड इट्स फाइन, आई कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन मैं चेंज किसको कर सकती हूँ कि प्रेजेंट कर्म कैसे करें। लेट्स से अभी हम मेहनत इतनी कर रहे हैं और हमें 70% रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। अगर हम ऑनेस्टी और मेहनत से करते रहेंगे तो धीरे धीरे 70% से क्या हो जाएगा, 80 पे तो चला जाएगा। लेकिन 70 पर करते हुए अगर हम आसपास के लोगों को देखेंगे और कहेंगे इसको इतना कैसे मिला, इसको इतना कैसे मिला, और खुद ऐसे हो जाएंगे और फिर उनको भी गिराने के तरीके अपना देंगे, तो हम 70 पे थे फिर कहां चले जाएंगे। पास्ट कर्म भारी था, प्रेजेंट कर्म को भारी नहीं करना, तो सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, सब कुछ क्रॉस हो जाएगा। पास्ट से ज्यादा पावरफुल क्या है, प्रेजेंट। लेकिन दूसरे की सक्सेस को क्वेश्चन नहीं करना, दूसरे की सक्सेस को क्वेश्चन करके खुद अपने लिए बुरा नहीं फील होना। दूसरे को वो मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है, मुझे वो मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूं, अब मैं और मेहनत करूं और कुछ अर्न करके दिखाऊं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सारा दिन क्या अर्न करना है, क्या अर्न करना है? आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, क्या लेकर जाएगी? संस्कार और कार्मिक अकाउंट। वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, हमारा यहां का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा उस बच्चे का। इसीलिए तो जन्म पत्री पहले दिन बनती ना, कुंडली क्यों बनी पहले दिन? बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया। वो कुंडली क्या है, वो जन्म पत्री क्या है, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, बेस्ड ऑन अभी अभी आप कुछ महीने पहले क्या क्लोजिंग बैलेंस लेकर आए थे। तो अपने प्रेजेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए हमें अपने कर्म पर कितना अटेंशन रखना है। सब लोग कर रहे हैं, होता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, फिर रिजल्ट भी वही आने वाला है जो सबके सामने आ रहा है, सबके सामने आ रहा है। एक एक कर्म, एक एक थॉट क्लीन, सारा दिन सबको दुआएं देनी है, तो सबसे रिटर्न में भी क्या मिलेगा, दुआएं, दुआएं देते हुए ही सबसे पहले किसको मिलेगा? अपने आप को। क्या बिजनेस करना ऑनेस्टली पॉसिबल है? ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना पॉसिबल है? ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना पॉसिबल है? है भी है, नहीं भी है? इसका क्या मीनिंग था? है भी है, नहीं भी? जी, एक चीज ट्राई करके देखना, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अपने फायदे से पहले उसका फायदा सोचना। अपने फायदे से पहले उसका फायदा सोचना। आपको कभी ऐसे कोई लोग मिले जिन्होंने अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा? नहीं मिला? बिजनेस में जो अपने फायदे से पहले आपका सोचे, जो कहे कि नहीं ये आप मेरे से नहीं लो, ये आप उनसे लो, आपके लिए बेटर डील वहां पर है, ऐसा कभी कोई मिला? इवन एक सिंपल चीज, एक बेकरी वाला आपको कहेगा सर ब्रेड आज फ्रेश नहीं है, मेरे से नहीं लो, सामने वाली दुकान से लो, ऐसा कभी कोई मिला? मिला? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मिलते हैं ऐसे लोग बहुत सारे। एक सब्जी वाला आपको कहेगा सब्जी मेरे पास फ्रेश नहीं, खत्म हो गई अच्छी वाली, आप उसके पास लो। मिला या नहीं मिला? मिला। उस व्यक्ति ने 20 रुपए की ब्रेड, 20 रुपए की सब्जी, 20 रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए बहुत कुछ, लेकिन उसने अपने फायदे से पहले क्या किया? हमारा फायदा सोचा। हम उससे नहीं खरीदेंगे उस दिन, लेकिन घर जाके हम उसके बारे में कैसा सोचेंगे? ये जो हम अच्छा अच्छा उसके लिए सोचेंगे, ये है दुआएं जो वो कमाएगा। अब हम ये बात सिर्फ अपने तक रखेंगे या औरों से भी शेयर करेंगे? औरों से भी शेयर करेंगे। जिस जिस से शेयर करेंगे वो भी एक अच्छी थॉट क्रिएट करेगा, अरे वाह आज की दुनिया में भी ऐसे भी लोग होते हैं, तो उन्होंने भी जो दुआएं क्रिएट की वो सब भी उसके पास गई, तो दुआएं तो उसने कमा ली। अब कई लोग बोलेंगे दुआओं से हमारा घर नहीं चलता। अगली बार से आप किसकी दुकान पर जाएंगे? उसके बाद क्या दो थॉट भी क्रिएट करेंगे किसी और के पास जाने के? तो उसने दुआएं आज कमाई, और आज की दुआएं कमाए हुए का रिजल्ट कल से वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएगा, ये 110% गारंटी। कोई भी इसको करके देख सकता है, आप खुद ही करके देख लो। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके पास वापस? आप भी जाएंगे, और जिस जिसको आपने बताया वो भी उसके पास जाएगा या नहीं जाएगा? और यही अगर कल वो बासी ब्रेड दे देता 20 रुपए, कोई चीज नहीं, लेकिन आप घर आके उसके लिए कैसा सोचते? मुझे चीट किया। तो उसने दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी कमाई, और उसके बाद हम उससे अगली बार ब्रेड नहीं लेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जो धन कमाते हैं सारा दिन, क्योंकि हम सब धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, जरूरी नहीं है, वो सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे। डेफिनेट है, क्योंकि दुआएं क्या करेगा? दुआएं क्या करता है? दुआएं अर्न करते हैं तो क्या करेगा वो? दुआएं हमें इतनी ताकत देगा, इतनी ताकत देगा कि हम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट ऐसे ही चुक तो हो जाएंगे, क्योंकि हमें लोगों की दुआएं मिली हैं। कई बार जीवन में कोई बहुत बड़ी बात आती है, अचानक ठीक हो जाती है, कहते किसी की दुआ लगी। बोलेंगे ना किसी की दुआ लगी, तो वो ऐसे ही नहीं किसी की दुआ लग गई, हमारे किसी कर्म ने किसी की दुआ हमने कमाई थी। और यही कभी कभी कुछ ऑपोजिट हो जाता है, तो हम कहते किसी की बद्दुआ लगी, तो वो भी ऐसे ही नहीं लग जाती, हमने ही ऐसा कुछ किया था जो किसी से हमने वो कमाई थी। तो कौन सी कमाई पे फोकस करें? कौन सी कमाई पे फोकस करें? धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, लेकिन किसी को दर्द देकर धन नहीं कमाना है, किसी को डांट कर चिल्ला कर अपना रोल नहीं प्ले करना है, किसी को चीट करके एक्सप्लॉइट करके इन द नेम ऑफ प्रॉफिट, इन द नेम ऑफ टारगेट। तो किसी को दर्द देकर अगर धन कमाया तो घर में धन आएगा, लेकिन धन के साथ क्या आएगा, उनका वो दर्द भी आएगा। एंड फिर वो धन से हम अन्न खरीदेंगे और अपने परिवार को खिला देंगे, साथ में कौन सी वाइब्रेशन खिला दी, धन कमाना ताकि, लेकिन वो धन दुआओं के साथ घर आना चाहिए, ताकि हम धन भी लेकर आएंगे घर और घर पर दुआएं भी लेकर आएंगे। उसके लिए हमें सारा दिन सिर्फ क्या करना है, हरेक के लिए कैसा सोचना, क्लीन, अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने रोल पर, जॉब पर, बिजनेस पे हरेक को सहयोग देना, हरेक को प्यार देना, गलती की क्षमा कर आगे उठाना, आगे बढ़ाना, हरेक को दुआएं देना, बहुत सारी दुआएं कमाना, अपने फायदे से पहले भी औरों का फायदा सोचना, तो अपना भाग्य कैसा बन जाएगा। हम किसी के साथ भी कंपटीशन में नहीं है, हमें अपनी जर्नी को अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे चलना है। अगर हमारे आसपास सब लोग भी डिसऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो भी हमें कैसे काम करना है। आजकल हमें कई बार लगता है कि सच्चाई से चलो तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, झूठ बोलो फटाफट काम हो जाता है, लेकिन कर्म का फल तो आएगा ही ना। एंड सबसे बड़ा फल ये होता है, जितना हम वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं आत्मा की विल पावर कम होती जाती है, सच बोलकर बात को फेस नहीं करते, झूठ बोलकर बच जाते हैं, ताकत तो कम हो गई। परमात्मा कहते हैं सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो हिलने डुलने दो, कलयुग है, कलयुग है, हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। लेकिन झूठ की नाव तो कर्म का फल है। एंड आज हम देख रहे हैं वो, हम बहुत कमा लिया लेकिन उतनी सारी कमाई के साथ घर पे स्ट्रेस भी आया, गुस्सा भी आया, हाइपरटेंशन भी आया, डायबिटीज भी आई, रिश्ते भी टूटे। इन चीजों को खत्म करना है और उसके लिए अपनी हर एक थॉट, अब सामने से कोई भी रंग का बॉल आए हमने कौन सा भेजना है। आप देखो दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, शुभ दिन ढूंढते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, वो सिंबल भी बनाते हैं, सब कुछ शुभ शुभ शुभ, लेकिन सफलता तब मिलेगी जब मन शुभ होगा। बाहर वास्तु तो देख लेंगे लेकिन सच्चा वास्तु कहाँ चल रहा है सारा दिन, वास्तु कहाँ है, वास्तु यहाँ का ठीक कौन करेगा, वहां का वास्तु ठीक करने के लिए खर्चा होता है, तो सब लोग वही मेथड यूज कर रहे हैं, ये वास्तु फ्री में ठीक होता है, ये वाली एडवाइस कोई नहीं देगा क्योंकि इसके लिए उनको कोई भी इनकम नहीं मिलने वाली है, ये हम में से कोई भी कर सकता है घर बैठे फ्री। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते हैं, परमात्मा हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं करता है, परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान प्यार और शक्ति देता है और कर्म की फ्रीडम हमारी है। और पास्ट के किए हुए कर्म जो हमारे सामने आ रहे हैं वो भी जब आते हैं तो उसको भी फेस करने का ज्ञान प्यार और शक्ति हमें मिलती है। तो तीन दिन जो हम निकाले यहाँ आए, हम ये सब कुछ लेंगे लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाएंगे देन वी हैव टू गो बैक डिफरेंट। यस, आर वी रेडी टू गो बैक डिफरेंट। आपको पता है ब्रह्मा कुमारीज में आने से लोग डरते हैं क्योंकि हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है कि यहां जाने से क्या हो जाता है, जादू लग जाता है। तो वो आप लेबल को सच प्रूफ करके दिखाना वापस जाने के बाद, वैसे भी सब लोग बोलते ही है तो उसको सच प्रूफ करके दिखाना, लेकिन वो जादू किसका है, वो है परमात्मा के ज्ञान और प्यार का जादू। हमें जादू लगना ही चाहिए। We have to go back changed, new way of thinking, न्यू वे ऑफ लिविंग एंड उसका रिजल्ट सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, हमारे पूरे परिवार को मिलेगा। अगर घर में से एक आत्मा भी अपनी सोच बदलती है, पूरे परिवार का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जहां हम काम करते हैं उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। आपने कैंपस में सब कुछ थोड़ा थोड़ा इंस्पेक्ट करना शुरू किया या नहीं किया? देखना देखना अच्छी तरह से, घुस घुस के कोने कोने में जा जाके, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट इंस्पायर्स। ज्ञान नॉलेज है, प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन हमें ऐसा करना ही है। और उसके लिए क्या करना है, जब हम यहां से वापस जाएंगे उस जीपीएस को छोड़ के नहीं जाना है ना। जीपीएस को क्या करना है, अब जीवन में पकड़ के जाना है, परमात्मा के हाथ और साथ को पकड़ के जाना है। जहां जहां हम रहते हैं, हम कोई ना कोई सेंटर के कांटेक्ट से यहां आए। अब जाने के बाद अगर हम आधा घंटा भी समय निकाले रोज, और वो परमात्मा के ज्ञान को टिप 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 कर आत्मा के ऊपर पढ़ने दे, तो आत्मा की क्वालिटी, जीवन की क्वालिटी, रिश्तों की क्वालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। रेडी ना चेंज करने के लिए? रेडी। एक थॉट और क्रिएट करना यहां से जाने के टाइम। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में तनाव है, दर्द है, डर है, चिंता है, और हमें इस पर वर्क करना है, एंड हमें मेहनत भी लग रही है एक एक थॉट को बदलने की, तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें अपनी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ती है कि हम कुछ ऐसा ना लें जो विच एड्स टू माई पेन, कि ऑलरेडी दर्द है और दर्द हो। उसके लिए जाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, जो भोजन हम खाते हैं, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट, 3 महीने सात्विक भोजन खाकर देखें। इट्स अ सिंपलेस्ट वे टू फील लाइट, सात्विक भोजन। क्योंकि जब भोजन तामसिक है, जब हमें समझ में आता है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, किसी को मार के उसके टेस्ट को एंजॉय करना किस क्वालिटी का कर्म बनेगा, किस क्वालिटी का कर्म बनेगा? डेड एनर्जी को यूज करना अपने को लाइफ देने के लिए किस क्वालिटी का कर्म बनेगा? जब किसी को बांध के रखा जाता है, अगर हमें कोई बांध दे अभी इधर कोने से और हमें पता हो कि 2 दिन के बाद हमें मरना है, तो 2 दिन कैसे बीतेंगे? क्या क्या थॉट्स क्रिएट, कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? दर्द, नफरत, गुस्सा, एंग्जाइटी, एंड उसी को फिर हम जाके पका के खाते हैं। 2 दिन, 4 दिन किसी ने बहुत नफरत, दर्द, डर क्रिएट किया, वाइब्रेशन, उसके हॉर्मोन्स भी वैसे ही सीक्रेट हुए बॉडी के अंदर, तो वाइब्रेशंस भी वही, बॉडी भी वही, और हमने उसको खाया, तो हमने क्या कंज्यूम किया? हमने वो दर्द, वो डर, वो नफरत भी कंज्यूम किया, बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। जब किसी के घर में डेथ होती है, शरीर छोड़ता है कोई, उस घर में खाना नहीं बनता उस दिन, राइट? ये नियम है कि उस घर में किचन में चूल्हा नहीं चलता उस दिन। कब जलता है? जब जलता है, जब वो बॉडी लेके जाएंगे, फिर पूरे घर को अच्छी तरह से धुलाई करेंगे, फिर जो जो उस फ्यूनरल पर जाते हैं आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? पहले स्नान करते हैं। हम क्यों करते हैं ये सब? तो क्या हुआ, फ्यूनरल पे तो गए, आके खाना खा लो? नहीं, सबसे पहले क्या करना है? स्नान करना है, कपड़े भी सारे। क्यों? क्योंकि वहां टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। जिस घर में अगर एक डेड बॉडी है उसमें खाना नहीं बन सकता है, तो हम तो उसको ही खा रहे हैं, अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जब आकर हमें नहाना है ताकि वो वाइब्रेशंस को हमने धोना है, तो हम उसको अपने ही अंदर कैसे डाल रहे हैं? तो 3 महीने के लिए सात्विक डाइट, इजिएस्ट वे, कम से कम अंदर लेके जाना तो बंद कर दें, फिर अपना चेंज करना भी इजी हो जाएगा। ये करके देखे, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए राजयोग मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है, छोटी छोटी। यस, व्हाट इज द वो फिर हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे पास अभी 1 मिनट है वाइंड अप करने के लिए सिर्फ। पेड़ पौधों को स्कूल में हम जब करते थे ना, तो हम कहते थे लिविंग थिंग, रिमेम्बर? वी यूज टू हैव 3 कॉलम्स, लिविंग बींग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, राइट? तो लिविंग बींग में कौन कौन आता था? लिविंग बींग के कॉलम में कौन आता था? मनुष्य और पशु। लिविंग थिंग के कॉलम में कौन आता था? प्लांट्स। एंड नॉन लिविंग मतलब सब कुछ जड़, यही फर्क है। लिविंग थिंग क्यों उसको हम कहते थे? क्योंकि वो ब्रीथ करता है और वो ग्रो करता है, इसीलिए हम कहते थे ये लिविंग थिंग है। लेकिन ये लिविंग बींग क्यों है? ये लिविंग बींग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, वो बींग है। वो बींग पेड़ और पौधे के अंदर नहीं है। पेड़ और पौधा, फल फूल, उसकी एक एज है, वो उतना ही ग्रो होगा, उसके ऊपर वो, उसके बाद वो अपने आप नीचे गिर जाएगा आपके लिए। पशु ग्रो होके वो खत्म नहीं हो रहा था, हमने उसको काट के खत्म किया है। दे टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट तो वो नहीं है, उसके बाद तो सब राइप एंड रेडी हो गया, उसको किसान ने क्या करना है उस फसल को? तो निकालना है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। जस्टिफिकेशन बहुत सारी है। वी आर नॉट हियर फॉर जस्टिफिकेशन, वी आर नॉट हियर फॉर आर्ग्यूमेंट, वी आर हियर टू थिंक। ये सोचते हैं कि किसी के अंदर कैसी एनर्जी क्रिएट हुई होगी जब हम एक पेड़ पौधे को काटते हुए हैं। वो हमारे लिए नफरत, डर और दर्द ऐसी इमोशंस नहीं क्रिएट करता है। देयर इज अ डिफरेंस। तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सपेरिमेंट के ये करने से हमें कैसा लगता है, और वो भी एक्सपेरिमेंट तब अगर हम अपनी मनोस्थिति को और पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो डर और दर्द की वाइब्रेशंस का इनटेक नहीं लेना चाहिए। खाने को बड़े प्यार और शक्तिशाली स्थिति में बनाकर, परमात्मा की याद में बनाकर, जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत 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 पावरफुल स्टेटमेंट है। जैसा अन्न वैसा मन। तो मन को अगर बदलना है तो अन्न को बदलना होगा। जैसा धन वैसा अन्न, तो धन पवित्र पहले, फिर अन्न सात्विक, मन शुद्ध, तन स्वस्थ, चारों का लिंक है। धन में कमाई में इम्प्योरिटी, अन्न तामसिक, मन दुखी, तन बीमार, ये भी एक चेन है। तो चेन की हर कड़ी पर काम करना पड़ता है, तब हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलनी। हमारा सोच हमारा भाग्य क्रिएट करती है। लेट्स सिट बैक 1 मिनट मेडिटेशन। अपने आप को देखें। मैं आत्मा, मेरी हर सोच, हर फीलिंग, हर वर्ड एनर्जी है। ये मुझ आत्मा का कर्म है। मेरी थॉट्स मेरा भाग्य लिखती है। आज से मेरे साथ कोई कुछ भी करे, मेरे पास एक चॉइस है, मुझे उनके लिए कैसा सोचना है। उस एक आत्मा को सामने लेकर आए जिसके लिए हमने कहा कि वो हमें ब्लैक कलर की एनर्जी भेज रहे हैं, उनको सामने लेकर आए। क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इस आत्मा के साथ मेरा कोई पुराना हिसाब किताब है, आज वही एनर्जी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन आज से क्वालिटी चेंज। Past is past, बीत गया, full stop। हम प्यार के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। आज क्षमा करते हैं, और आज से हम उनके बारे में जब भी सोचेंगे, क्लीन, कंपैशन, रहम, ब्लेसिंग्स, दुआएं, गुड विशेस, क्योंकि हमारी सोच हमारा भाग्य बनाती है. एंड मुझे आज से इस कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है. सबको सुख दे, आगे बढ़ाए, तो हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे बढ़ जाएंगे. दुआएं कमाएं, ये हमारे जीवन का अब लक्ष्य है. हम रेस में नहीं हैं, हम अपनी यात्रा पर हैं. जैसी गाड़ी चलाएंगे वैसे खुद ही एंजॉय करेंगे. आई हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑफ माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय वैल्यूज एंड माय प्रिंसिपल्स. Just one thought before leaving. अगर आपकी किसी से बातचीत बंद है बहुत समय से, इस सेशन के बाद जब बाहर जाएंगे उनको फोन करके ओम शांति कर देना. हिसाब किताब बदल जाएगा. कोई भी अकाउंट को लंबा नहीं खींचना. कुछ भी नहीं बोलना है, ना पास्ट की बात करनी है. कहेंगे माउंट आबू आए थे, आपकी याद आई, सोचा ऐसे ही आपको हेलो करते हैं. कर्म बदलेगा, सोच बदलेगी, भाग्य बदल जाएगा, अकाउंट चेंज हो जाएगा. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.
ओम शांति. कहते ही है सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे भी बदल जाते हैं. कश्तियों को बदलने की जरूरत ही नहीं, बस हमको क्या करना है, दिशाओं को बदलो तो किनारे भी बदल जाते हैं. हम शिवानी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आपने आज हमको सीख दी कि अपने विचारों को हमको परिवर्तन करना है. सोच को बदलो तो पूरी जीवन हम अपनी चेंज कर सकते हैं. अगेन शिवानी दीदी, थैंक यू सो मच. ओम शांति.